नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर आप हिंसा के कितने वीडियो देख सकते हैं? इन वीडियो को देखना और आपको दिखाना अपने मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसा हो गया है। तब सवाल यह भी उठता है कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं और उनके समर्थन में बोलते हैं या चुप रहकर सपोर्ट करते हैं, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता होगा? उन्हें नींद अच्छी आती होगी? हर किसी को हिंसा का समर्थक घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा का वीडियो नफरती मीम फॉरवर्ड करने वालों को इस श्रेणी में रखा ही जा सकता है। इन लोगों के बारे में ही कल्पना करें तो आपकी कल्पनाएं हैरान रह जाएंगी। जैसे हिंसा का वीडियो फॉरवर्ड करने वाला क्या अपना सीना गुब्बारे की तरह फुला देता होगा, इस तरह भड़काऊ पोस्ट के नीचे थम्सअप लगा देता होगा और किसी का ठेला पलट देने की खबर के नीचे स्माइली लगा देता होगा। मांसाहार को लेकर झगड़े के वीडियो देखने के बाद क्या उसने मीट मछली और अंडा खाना बंद कर दिया, या किसी बड़े रेस्तरां में जाकर चिकन करी ऑर्डर करने की योजना बना रहा होगा? क्या ऐसी सोच का व्यक्ति अपने बच्चों को किसी धर्म रक्षक संगठन में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेगा? क्या वो कहता होगा कि IIT की कोचिंग से लौटते वक्त कुछ समय धर्म की रक्षा में किसी मस्जिद की दीवार पर चढ़ने का भी अभ्यास करते रहो? कुल मिलाकर हिंसा के समर्थन में खड़े समाज के अलग अलग तबके के लोग इन दिनों जीवन कैसे जी रहे हैं, ये जानना चाहिए। हिंसा के वीडियो लगातार देखने से अगर एक समुदाय बेचैन हो रहा है तो यह जानना जरूरी है कि दूसरा समुदाय क्या खुश हो रहा है। कट्टरता के रास्ते पर चलने वाले लोगों की मानसिक बुनावट कैसी होती है? क्या वे किसी का घर जलाकर, किसी की दुकान तोड़कर हमेशा खुश रहते हैं? धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा उन धार्मिकों को भी चपेट में ले लेती है जो चुपचाप अपना धर्म कर्म करते रहते हैं, जिनके लिए मंदिर जाना एक दैनिक क्रिया है और वे बिना किसी कारण नियमित जाते रहते हैं। गुजरात के खंबात में कन्हैया लाल पैदल चलकर अपने गांव के रामजी मंदिर गए। राम का दर्शन कर लौट रहे 57 साल के कन्हैया लाल रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए झगड़े में फंस गए और उनकी मौत हो गई। उनका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है। भवेश राणा ने बताया कि पिता पैदल ही मंदिर गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है कि कन्हैया लाल की मौत किन कारणों से हुई, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, जांच हो रही है। हिंसा में शामिल लोगों, उसकी भीड़ में हिस्सा लेने वाले और समर्थकों को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भीड़ में नफरती नारे लगाने वाले युवक अपने भीतर की अलग अलग कमियों के शिकार होते हैं। मुमकिन है गणित और अंग्रेजी में फेल कर गए हों, किसी शारीरिक कमजोरी के शिकार हों, समाज परिवार और मोहल्ले में आकर्षण का केंद्र न बन पा रहे हों। ये सारी कमियां उनमें भी हो सकती हैं जो गणित में तेज हों, जो अमरीका में रहते हों, अंग्रेजी बोलते हों और धर्म के गौरव के नाम पर नफरती हिंसा और भीड़ का समर्थन करते हों। ऐसी भीड़ पर दुनिया भर में अध्ययन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। पत्रकार रेवती लॉल ने एक किताब लिखी है, दी एनाटॉमी ऑफ हेट। 2002 के गुजरात दंगों में शामिल 3 पात्रों के साथ लंबा समय बिताकर रेवती ने उनके मन को टटोला कि उनके बचपन में कितनी हिंसा थी, वे अपनी कमियों को दूसरे समाज के लोगों के सामने किस तरह से देखते थे, किस तरह कोई उन्हें अपने से छोटा समझता था, जिसका वे केवल बदला नहीं लेते हैं बल्कि इस हिंसा में शामिल होकर उन कमियों पर विजय भी प्राप्त करते हैं और पहचान भी। इस किताब का एक पात्र बचपन में अपने पिता के हिंसक रूप का शिकार है जो उसकी माँ को गालियां देता है। वह पात्र एक समुदाय की महिला का बलात्कार करता है, उसे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भी इसी तरह की हिंसा करता है। दंगों में शामिल होते ही उसे भीतर का भरोसा बढ़ने लगता है। रेवती लॉल ने इन कमियों के कई रूपों को पहचाना है। हो सकता है कि इस युवक की तरफ मोहल्ले की कोई लड़की कभी ना देखती हो तो वह धर्म के नाम पर उन लड़कियों का रक्षक बनकर उनकी निगाहों में आ जाता है, तो कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को मारकर इलाके के युवाओं में हीरो बन जाता है। जिस समाज में पहचान केवल IIT और IAS की परीक्षा पास करने से मिलती है, उसी समाज में उससे ज्यादा ताकतवर पहचान पाने का यह रास्ता सभी के लिए उपलब्ध है। दी एनाटॉमी ऑफ हेट वेस्टर्न प्रकाशन से छपी है, जो अब बंद हो चुका है। इस किताब की कीमत 599 रुपए है। रेवती से जब बात कर रहा था तब उन्होंने एक प्रसंग बताया कि वह आए दिन देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे गली के कुत्तों को पत्थरों से मार रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। कुत्तों को मारने से इन बच्चों को खुशी क्यों मिलती है? क्या ये छोटे मॉब का प्रतीक नहीं है? हमारे जीवन में किसी से कम होने का एहसास कई स्तरों पर होता है। कोई जाति के कारण आपको छोटा बताएगा तो कोई धर्म के कारण। रेवती की एक बात दिमाग में अटक गई, शेर वही बनना चाहता है जो शेर नहीं होता है। इस समाज में पहचान का यही टेम्पलेट है कि कोई शेर बने या सफल बने, इसके अलावा आप या हम किसी और पहचान को मान्यता नहीं देते हैं।
कुछ लोग जो दबे कुचले हो या अपने आप को दबे कुचले मानते हो या उस वर्ग से भी हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पहचान में, उनकी पहचान में कहीं वो अपने आप में कमी पाते हैं। और कुछ 6-7 लोग, ज्यादातर पुरुष, क्योंकि ये पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा आप महिलाओं को ऐसे झुंड में हिंसा लेते हुए, मॉब में हिंसा लेते हुए नहीं देख पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं से ये पुरुषार्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। और पाएंगे आपकी और हमने पाया है कि जब कई ऐसे लोग मिलते हैं तब यारी दोस्ती में कहते हैं कि चलो हम सब अपनी पहचान साथ में चमकाते हैं। पहचान कैसे चमक जाती है? अगर आप अपना भड़ास किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर निकालते हैं और एक कमजोर वर्ग, ये एक सामाजिक तौर पर इसको एक जरिया बनाया गया है, तो फिर उससे आपको एक झुंड का बल भी मिलता है दूसरे को पीटने के लिए, उसमें मजा भी आता है। और जहां तक हम देख सकते हैं, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई कोनों में, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों में हमें देखने को मिलता है यही चीज कि जब लोग अपने पहचान में अपने आप को मायूस मानते हैं कि भाई मेरी ऐसी इतनी अच्छी बॉयफ्रेंड या इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं, क्यों नहीं है, मुझे लोग वाह वाह क्यों नहीं कहते हैं, मैं रवीश जैसे बड़ा सितारा क्यों नहीं बन सकता या बन सकती हूं, तो तब जब हमारे पास दूसरे रास्ते नहीं मिलते हैं, जब एजुकेशन ठप पड़ा है, जब नौकरियां नहीं मिलती हैं, जब हमारे बॉस भी हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, जब घर आकर भी हमें ताने सुनने पड़ते हैं परिवार के, और माँ बाप भी हम पर हावी होते हैं, तब सारे रास्ते जाकर हमें गुस्सा हमें एक बल देती है, और दूसरों के गुस्से में जब हम मिलाकर एक इसका एक सामाजिक उत्थान का एक जरिया बनाते हैं, तो ये एक अच्छा सा ढांचा मिर्चीदार पनपती हुई तली हुई पकौड़े के जैसे खाने लायक चीज बन जाती है, जिसको हम निगल कर अपने सारे दिल का भड़ास निकाल देते हैं। तो इसका एक बहुत ही, हम इसको नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक फायदा इस भीड़ के हिस्से, इसमें हिस्से लेने वाले लोगों को इसमें क्या सकारात्मक चीज मिल रही है, वो जब तक हम नहीं देखेंगे, इससे इसको पहचान नहीं पाएंगे, इससे निकलने की भी कोशिश, इसके प्रक्रिया भी नहीं बना पाएंगे। तो निकलने की भी प्रक्रिया है इससे, अगर हम दूसरी ऊपर उठने की सीढ़ियां तैयार कर पाए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस सीढ़ी से मिलता क्या है। एक तो सोशल स्टेटस बढ़ती है, पावर आता है हाथ में, सीधा सीधा हम दूसरों को दबाकर अपने अंदर हम बिल्कुल दबाए हुए हैं, मायूस फील हो रहे हैं, एकदम से सीना चौड़ा करके हम जीने लगते हैं, तो हमारी पहचान बढ़ती है और हम अपने आप को लाइक करने लगते हैं। इससे पहले हम अपने आप को उतना पसंद नहीं करते हैं, और ये जब हम ऐसे झुंड के एक एक व्यक्ति को अलग अलग उनकी मानसिक दिशा को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि ये लोग ज्यादातर पुरुषार्थ से जूझते हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी हद तक खुद हिंसा का शिकार हो चुके हैं कहीं ना कहीं, या सामाजिक रूप पे, या उनकी पूरी समाज दबी हुई है, या व्यक्तिगत रूप पे, या दोनों। और फिर सामाजिक रूप पर ये बड़े पैमाने पर तब धारणा लेती है जब समाज के दूसरे तत्व जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय, जैसे कि एजुकेशन, ये सब खत्म होने लगते हैं, तो यही एक जरिया मिलता है आगे बढ़ने के लिए।
ऐसा नहीं है कि सभी कमजोर लोग यही रास्ता चुन लेते हैं, बहुत से कमजोर या असफल लोग हिंसा से दूर भी रहते हैं, लेकिन जो हिंसा के करीब जाते हैं उनमें यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हिंसा के प्रति बचपन से आकर्षण और व्यक्तित्व में कमी को सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है, जैसे आपके दिमाग में बार बार भरा जाता रहेगा कि आपके धर्म को दबाया गया है। इस तरह से यकीन दिला दिया जाएगा कि धर्म का पालन अब कर पा रहे हैं, पहले तो आप पूजा भी नहीं कर पाते थे। आप इतिहास के दूसरे तथ्यों को देखना बंद कर देते हैं और उस भीड़ का पार्ट या समर्थक बन जाते हैं। इस तरह से हिंसा के अंतहीन चक्र में फंसते जाते हैं। लोग फंसते रहे इसके लिए इतिहास से सही और फर्जी किस्से बार बार खड़े किए जाते हैं। यह तो हुआ कि कोई नौजवान कट्टरता की तरफ किन किन कारणों से जाता है, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर भी है कि जो कट्टर बनता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। क्या वह इस नई पहचान से हमेशा खुश रहता है? भीड़ में शामिल होने से जो ताकत मिलती है उससे वो आनंद में रहता है, या हिंसा के बाद उसे भी बुरे सपने आते हैं?
पॉलिटिकल रिलीजियस वायलेंस जो होते हैं, जो सामने वाले इंसान को बिल्कुल कोई जानता नहीं होता, पर उसकी आइडेंटिटी के वजह से, उसकी हेट के वजह से वो उसे उस किस्म का व्यवहार करता है उसके साथ, तो वो जो है वो ब्रेन एरियाज जो एक्टिवेट होते हैं वो ओवरलैप करते हैं इन दोनों चीजों के, अडिक्शन के और वायलेंस के, अडिक्शन सब्सटेंस के जैसे कोकेन, हीरोइन वगैरह है, मेथैम्फेटामिन है, अल्कोहल है, और वायलेंस के। और ये जो एरियाज हैं एडिक्शन में इतने इम्पोर्टेंट है, पर ये बात ये भी जरूरी है कि कोई पैदा नहीं होता ऐसे, तो जब हम सीख सकते हैं एडिक्शन करना तो हम उसे अनलर्न भी कर सकते हैं, मतलब ये भी सिखा सकते हैं अपने आप को कि कैसे इससे बाहर निकलना है। तो यहाँ पे न्यूरोसाइंस का और साइकियाट्री का बहुत बड़ा रोल है जो हम यहाँ पर काम करते हैं। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि सबको ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो, पर बहुत सारे जिन्होंने, मैंने बात की है नियोनाजीज से, कई बात की है, कई आईसिस या अलकायदा के लोगों से बात की है, कई हिंदुत्व के लोगों से बात की है, तो कोई रिलीजन का या कोई रेस का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। ये एक बीमारी है किस्म की, ह्यूमंस हम होते हैं जो हम अपने आप को ह्यूमंस कहते हैं, ये हम भी एक एनिमल की तरह ही हैं जिसमें वही चारी ब्रेन एरियाज होते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही होते हैं जो दूसरे जानवरों में होते हैं। जो हिंसा करते हैं, मैं आपको ये बतानी चाहिए कि जो खुश होते हैं देखकर या किसी और को देखकर या खुद हिंसा कर, ये जो खुश होते हैं वही ये फील गुड इमोशन है जो दिमाग में हमारे होता है, जो कोकेन या हीरोइन कंजम्पशन से जिस तरह का फील गुड इमोशन आता है वैसा ही आता है, और वो ही ब्रेन एरियाज में वो इमर्ज होता है, निकलता है, जहां पे ये कोकेन लेने वाले लोगों को होता है। तो जो उनके मजा आता है ये वही है, वही मजा है जो एडिक्शन में होता है। तो ये हिंसा करने वाले जो वाले होते हैं जो, वो एक किस्म के एडिक्शन का ही शिकार होते हैं, जो हमारे पास अभी तक कोई ठीक तरह से हल नहीं निकल पाए, क्योंकि अभी हमारी साइंस बहुत पीछे है, तो इस वजह से न्यूरोसाइंस और साइकियाट्री में काम कर रही है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में या किस तरह के होते हैं, तो ये लोग ना आउटवर्डली बड़े ही अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि एक जो हिंसा करता है उसे पता है कि उसने कोई गलत काम किया है, पर ये जो होते हैं उन्हें लगता है कि ये सामाजिक बहुत ही सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये सबकी मदद कर रहे हैं। तो जो इनके अपने लोग हैं जिन्हें ये इन ग्रुप में कहते हैं, ये इनके अपने ग्रुप के अंदर जो लोग आते हैं उनकी तरफ, और खास करके जानवरों की तरफ, आपने देखा होगा कि हिटलर जैसे लोग और ऐसे कई सारे, मैंने भी नियो नाजीज वगैरह या हिंदुत्व के और इवन इस्लामिस्ट देखे हैं, वो बिल्लियों से, कुत्तों से, और उनसे बहुत प्यार करते होते हैं, तो ये दिखाते जरूर हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं, पर एक्चुअली में उनका मकसद कोई और ही होता है, ideologically driven होते हैं। एक और चीज होती है कि ये अपने पारिवारिक जीवन से थोड़े से हटे हुए भी होते हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये दूर दूर रहते हैं बहुत सारे लोगों से, अपने घर से स्पेशली सबके साथ घुलते मिलते नहीं है उस तरह से, या अपने आप को एक अलग ही पेडेस्टल पर रखते हैं, बड़ा ऊंचा अपने आप को सम्मान देते हैं।
मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसे बहुत से रिसर्च है जो बताते हैं कि भीड़ की हिंसा में शामिल लोगों को भी अपराध बोध होता है। ऐसे लोग खुद को समझा लेते हैं कि उनके मामले में नैतिकता की जरूरत नहीं है, उन्हें दबाया गया है तो ऐसा करना सही है। इसके बाद भी भीड़ में शामिल लोग ट्रॉमा, यातना और डिप्रेशन, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इस भीड़ से जो भी पहचान मिलती हो, आप उस पहचान को लेकर किसी बारात में नहीं बोल सकते हैं। हालांकि अब लोग बोलते भी होंगे कि जुलूस में गए थे, मस्जिद पर झंडा लहरा दिया था, एक समुदाय को खूब गालियां दी, उसके ठेले को पलट दिया। क्या आप ऐसा कहेंगे, या आप इसकी जगह कहेंगे कि आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, इन दिनों भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं सत्या नडेला, भले ही इन हिंसा पर सार्वजनिक रूप से बोलने की उनमें हिम्मत ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी किताब हिट रिफ्रेश में एक बात कही है, अगर हम टेक्नोलॉजी से मानवीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो हम इंसानों को दूसरे की भावनाओं, मूल्यों और संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान का भाव विकसित करना होगा। मैं हर उस व्यक्ति के प्रति करुणा रखता हूं, एम्पथी, जिसके साथ चमड़े के रंग, धर्म या किसे प्यार करता है के आधार पर हिंसा हुई है, जो प्रोडक्ट बनाता है, जिस नए बाजार में प्रवेश करता हूं, जिनके साथ काम करता हूं, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं के साथ मैं हर चीज के केंद्र में करुणा को रखना चाहूंगा। सत्या नडेला को पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों के बीच नफरती बातों का तूफान चल रहा है। इसके प्रसार में इन संस्थानों में काम करने वाले बहुत से लोगों का भी हाथ है और समर्थन भी। टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले लोग ही बताते हैं कि वहां नफरती आंधी किस तरह बहुतों को चपेट में ले चुकी है। यही नहीं, एल्गोरिदम के इस्तेमाल से नफरती बातों को सोशल मीडिया की साइट पर सबसे आगे कर दिया जाता है। हर किसी के सामने होता है, आप वही बातें देखते हैं। इस आधार पर आपकी पसंद बना दी जाती है और नफरती वीडियो की सप्लाई शुरू कर दी जाती है। एक चक्र बनता है। कहां तो चरखा इस देश का प्रतीक है, लेकिन अब उसकी जगह बुलडोजर चलने लगा है। खारगोन में हिंसा के बाद प्रशासन ने कई घरों को ढहा दिया। हिंसा की घटना के बाद बुलडोजर से गिराए जा रहे इन मकानों और दुकानों को देखकर क्या मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में काफी खुश होगा? लेकिन इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस के इरम सिद्दीकी ने जो रिपोर्ट की है वो भी पढ़ लीजिए। इरम ने पुलिस से लेकर पीड़ित तक से बात की। खारगोन में अलग अलग 5 इलाकों में 16 घर और 29 दुकानें ढहा दी गईं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन होगा। क्या गठन हुआ और उसके नतीजे आ गए? गृहमंत्री ने कहा कि जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थरों का ढेर बना देंगे। गृहमंत्री के बयान को सामने रख ढहाए जा रहे इन घरों को देखिए। किसी आम आदमी का घर तोड़ा जा रहा है, राजनीतिक दलों के सारे खास लोग चुप हैं। एक्सप्रेस को प्रशासन ने बताया कि ये सारी इमारतें अवैध रूप से बनी हैं। एसडीएम का बयान है कि अतिक्रमण कर अवैध रूप से बने होने के कारण दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। इन इलाकों से पत्थर चलाने की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद एक्शन लिया गया। तो इस तरह से घरों और दुकानों को ढहा दिया गया, क्या इतनी जल्दी दोष साबित हो गया? 50 साल के रफीक मोहम्मद की दुकान तोड़ दी गई। उनका कहना है कि उन्होंने पत्थर नहीं फेंके, बल्कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई वे खुद भी चाहते हैं। अब वे अपना परिवार कैसे चलाएंगे? जामा मस्जिद परिसर में 12 दुकानें ढहा दी गई हैं। इनमें से 4 दुकानों में हिंदू किराएदार थे। दुकानदार नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि जितना हो सकता है किसी तरह अपने सामानों को बचाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस आया हो इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। क्या हम एक तरफा भारत बनता हुआ नहीं देख रहे कि इस तरह से फैसले हो रहे हैं और अतिक्रमण के नाम पर घरों को ढहाया जा रहा है? पत्थर चलाने वालों के नाम पर क्या किसी का भी घर इस तरह से ढहा दिया जाएगा? क्या सिर्फ यही देखा जाएगा कि पत्थर किसने चलाया? क्या यह नहीं देखा जाएगा कि उसे किसने उकसाया? यह सामान्य दृश्य नहीं है। जिस बुलडोजर के पीछे समाज पागल था, वो इसके बहाने अपने भीतर के पुरुषार्थ को चमका रहा था। वो दूसरों के ढहते हुए मकानों को देखकर अपनी हीनता के बोध में गौरव की हवा भर रहा था। लेकिन सोचिए, जिसका घर सुनवाई और दलील से पहले इस तरह से ढहा दिया गया हो, उसका भरोसा संविधान की किस धारा पर मजबूत हुआ होगा? कितने वीडियो हैं जिसमें एक धर्म के विशेष की बहु बेटियों के बलात्कार से लेकर मुस्लिम मोहल्ले में जुलूस रोककर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। तेलंगाना से एक ऐसा ही वीडियो आया है। ऐसे लोगों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके घर तो नहीं ढहाए जा रहे। सबका भारत बनाने के नाम पर एक तरफा भारत बनता लग रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उनसे जब अनुराग द्वारी ने पूछा तो उनके जवाब बिल्कुल स्पष्ट थे। इस जवाब में ही आपको कानून की प्रक्रिया का नजारा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सवाल के जवाब में कहते हैं, हम आरोप की चिंता नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई दंगाई फन उठाएगा तो उसको कुचल देंगे। अनुराग ने पूछा, क्या दंगाई केवल एक ही समाज से है? तो मंत्री जी कहते हैं, एक ही समाज से है।
घर जो टूट रहे हैं, क्या वो अवैध साबित हो गया है? क्या प्रशासन ने
अवैध हैं, साबित होने के बाद ही तोड़ रहे हैं।
तो वो 84 लोग जिन पर मुकदमा कायम हुआ है, क्या सिर्फ उन्हीं के घर अवैध थे? 94, माफ कीजिएगा, कल तक 84 थे।
हाँ, बढ़ गए हैं वो, इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जो आए हैं उसमें परीक्षण हो रहा है, परीक्षण होने के बाद ही कार्रवाई हो रही है।
पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं?
अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है।
पर ये साबित हो गया सारी चीजें, मतलब बार बार जो एक बात आ रही है सर वो अदालत,
बात नहीं है बार बार कोई बात नहीं आ रही है, आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं,
हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं,
कभी नहीं हुई, एनडीटीवी को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका,
नहीं कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है, राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है,
हम आरोप की चिंता नहीं कर पड़ते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई उसको कुचल देंगे ये हम,
वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है
ना, हमला कहां से हुआ आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको,
आपकी सरकार में मुस्लिम भी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ जाते हैं,
अगर ऐसा है, हमले करेंगे तो बिल्कुल ना करें, और नहीं करेंगे शांति से रहेंगे तो सब प्रेम से रहेंगे।
इस जवाब से भीड़ में शामिल दूसरे समुदाय को उकसा रहे नौजवानों को कितना बल मिला होगा, राज्य से हमेशा ही ऐसे तत्वों को समर्थन मिलता रहा है लेकिन समाज से कभी इतना समर्थन नहीं मिला, बहुत से लोग गुप्त समर्थन करते हैं, बाहर सोसाइटी में पता ना चले इसलिए हाउसिंग सोसाइटी और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नरोत्तम मिश्रा को याद दिलाना चाहिए कि उनके ही राज्य में 2016 से हैप्पीनेस डिपार्टमेंट चल रहा है जिसका एक काम सांप्रदायिक तनावों को कम करना भी होना चाहिए। इस विभाग का हिंदी नाम राज्य आनंद संस्थान है, इसमें तरह तरह के आनंद उत्सव, आनंद सभा, आनंद क्लब का जिक्र है। खुश रहने के लिए अन्य बातों के अलावा नागरिकों की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उन्नति पर भी जोर है, लेकिन इस तरह से जब आप किसी के घर को अचानक ढहा देंगे, किसी समुदाय को गाली देंगे, तब ऐसे दृश्यों को देखकर क्या नागरिक में मानसिक और भावनात्मक उन्नति हो सकती है या दहशत होने लगेगी? क्या आनंद का एक आधार यह नहीं है कि नागरिक का सरकार और समाज में भरोसा बने? जो लोग उकसाने गए या भक्ति गानों में उकसाने की बातें कर रहे थे, क्या वे आनंद का निर्माण कर रहे थे? वैसे राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट से पता चला कि 15 पदाधिकारियों में से 7 पद खाली हैं। इन पदों पर अगर किसी की तैनाती हो जाती तो उसे नौकरी मिल जाती, और जिसे नौकरी मिलती उसके जीवन में आनंद भी आ जाता। कम से कम हैप्पीनेस इंडेक्स के निदेशक का पद तो खाली नहीं रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए विभाग बन रहे हैं, मगर उनकी हालत देखकर लगता है कि आनंद कम, पीड़ादायक ज्यादा है। लेकिन अगर यही मंशा है कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, तो फिर राजनीति में मिल रहे हिंसा के समर्थन के बारे में सोचिए। क्या धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सभी धर्म गुरुओं से अपील की है कि भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह द्रौपदी का चीरहरण होता हुआ ना देखें, सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बोलें, आगे आए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा ने दक्षिणपंथी संगठनों से कहा है कि मुसलमान भाइयों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने दो, हमारी कामना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मां के बच्चे की तरह रहें, लेकिन कुछ लोग भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। यही बात प्रधानमंत्री भी कह सकते थे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कुछ ग्रुप लोगों को उकसा रहे हैं, अगर कोई संगठन कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। कर्नाटक में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देश का नौजवान परीक्षाओं में पर्चे लीक होने से परेशान है, उसका एक बड़ा हिस्सा बिना नकल के पास नहीं कर सकता। कई लोग नकल ना होने पर इम्तहान छोड़ देते हैं और नकल होते ही पर्चे खरीदने लग जाते हैं। ऐसे युवाओं से भरे इस समाज में हम अगर कहें कि हिंसा मत करो, अधर्म मत करो, तब फिर वही हमसे पूछेंगे बताइए क्या करें अगर ये ना करें। कोई बुराई नहीं कि अपने इष्ट की आराधना में जुलूस निकालें, उत्सव भी मनाई, लेकिन जिस तरह से मस्जिदों के आगे नारे लगाए गए, उकसाया गया, गानों में ललकारने की बात कही गई, मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए गए, क्या उसके बिना उत्सव नहीं मना सकते थे? इस पूरी प्रक्रिया में इसमें शामिल नौजवान क्या बन रहे हैं? धर्म की रक्षा को अगर इतना खतरा पैदा हो गया है तो कस्बों के और हिंदी माध्यम के नौजवान ही इन जुलूसों में क्यों जा रहे हैं? अंग्रेजी मीडियम वाले महानगरों के बच्चों को भी इसमें जाने के लिए प्रेरित कीजिए, तब उन्हीं के माता पिता हाथ खींच लेंगे, उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, नफरत करना अगर उत्सव का अनिवार्य हिस्सा बन गया है तब फिर प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस में डाल दीजिए। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे अमेरिका जाएं और हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ धर्म की रक्षा में आगे आगे चलते रहें और दंगाई मानसिकता के शिकार हो जाएं, यह ठीक नहीं। क्या आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे उस जुलूस में जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को ललकारा जाता है? NRI अंकिलों से वीडियो कॉल पर पूछ लीजिएगा। ओला उबर चलाने वाले हजारों टैक्सी चालकों के लिए अच्छी खबर है। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छी खबर है। उनके हिसाब से किराया नहीं बढ़ा, लेकिन ओला ने दिल्ली NCR में 11% और उबर ने 12% किराए में बढ़ोतरी कर दी है। देश के अन्य शहरों में भी किराया बढ़ा है। पेट्रोल महंगा होने के कारण टैक्सी चालकों की कमाई बहुत घट गई है। अब इससे कुछ राहत मिलेगी, बेशक इससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन एक बार इन चालकों की हालत को समझ लेंगे तो किराए में हुई वृद्धि का आप स्वागत करेंगे।
ओला और उबर का सफर महंगा। दिल्ली NCR में उबर ने अपना किराया 12% बढ़ाने का ऐलान किया है, वहीं ओला की सवारी 11% महंगी हो गई है। ईंधन की बढ़ी कीमतों का हवाला कंपनियों ने दिया है। जानकारी के मुताबिक ओला ने अपना किराया मुंबई में 10%, कोलकाता में 13%, चेन्नई में 14% और हैदराबाद में 16% बढ़ाया है।
सारे बंदे मर ही रहे हैं, पेट्रोल बढ़ी गया, CNG बढ़ी गया, सब चीज बढ़ गया, क्या करेगा, सैलरी बढ़ती नहीं है, सैलरी में टिकी पड़ी है सबकी।
कमाई तो हो नहीं रही कुछ, मतलब सैलरी में कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा, बस ये हो रही महंगाई बढ़ती जा रही है।
महंगाई से परेशानी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई है नहीं, परेशान है।
बढ़ चुकी है किराया, अभी 40-50 रुपए फालतू लग के आया
अभी। हाँ, क्या कहेंगे, ये महंगाई जो है,
महंगाई तो आसमानों पर छुड़ी है।
ओला ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि उबर ने स्टेटमेंट में लिखा है कि ईंधन की बढ़ी कीमतों के बीच ड्राइवरों का फीडबैक हमें मिला है। बढ़ती कीमत के असर को कम करने को लेकर उबर ने दिल्ली NCR में ट्रिप फेयर में 12% का इजाफा किया है। हम ईंधन की कीमतों पर नजर रख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। ड्राइवरों के पास भी बढ़े किराए और कमाई बढ़ने के संदेश आने शुरू हो गए हैं।
हाँ जी, हाँ जी, मैसेज आने शुरू है।
कहाँ कहाँ से?
ओला में चलाता हूँ तो ओला से आया मैसेज।
और आपके पास कहाँ से?
ओला उबर दोनों से। सर, ओला में आया 11% की बढ़ोतरी हो गई और उबर में आया है 13% की बढ़ोतरी हो गई है,
ये मैसेज आया
जी सर।
वहीं ओला उबर के ड्राइवरों की नुमाइंदगी करने वाला संगठन सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन इस पहल से संतुष्ट नहीं।
ड्राइवर को फायदा होगा लेकिन बहुत कम फायदा होगा। कीमत तो जरूर बढ़ाई है उन्होंने और 12% 11% के मैसेज भी आ रहे हैं सभी के पास, लेकिन उसमें बहुत कम फायदा होगा ड्राइवर को। वो फायदा नहीं होगा जो हमारी डिमांड है। हमारी तो बहुत जायज डिमांड है सरकार से भी और कंपनी से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से और इस कंपनी से भी, किराया सरकार द्वारा तय किया जाए।
ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ओला उबर के ड्राइवर ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो अब किराया बढ़ चुका है और मार का असर पड़ेगा आम आदमी पर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
गुजरात में चार धाम की यात्रा के लिए इतनी बुकिंग हो गई है कि ट्रेवल एजेंट को बुकिंग बंद करनी पड़ी है। वहां के अखबारों में खबर छपी है कि उत्तराखंड जाने की बहुत मांग है। उम्मीद है इस बार उत्तराखंड में पर्यटन का कारोबार अच्छा रहेगा। पर्यटन की तैयारी कीजिए ताकि इस कारोबार में लोगों को फिर से रोजगार मिले। लेकिन क्या आपका बच्चा धर्म की रक्षा में निकलने वाले उन जुलूसों में जा रहा है जिनमें गालियां दी जाती हैं, दूसरे धर्म को ललकारा जाता है? नहीं जा रहा है तो जरूर भेजिए, आपकी नींद उड़ जाएगी। विद्या कसम, ब्रेक के बाद।
न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर आज ताबड़तोड़ हुई एक फायरिंग में कम से कम 13 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कई तस्वीरें सामने आई जिनमें खून से लथपथ कई घायल लोग जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय लोग उनकी मदद की कोशिश कर रहे हैं। ये वारदात तो सुबह हुई जब सबवे स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक बंदूकधारी ने इस वारदात को अंजाम दिया जो अब भी इलाके में सक्रिय है। न्यूयॉर्क पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती जांच से सामने आया है कि एक संदिग्ध वारदात के बाद फरार हुआ। ये आरोपी कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमीज पहने हुए था और मुंह पर गैस मास्क लगाए था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस ने इलाके में विस्फोटक मिलने की बात भी कही है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस घटना को आतंकी हमला करार नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 2+2 स्तर की बातचीत हुई। अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के साथ इस बातचीत में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकी पत्रकार के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब काफी चर्चा में है। पत्रकार ने पूछा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही है तो भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप रूस से ऊर्जा खरीद को देखेंगे तो मैं आपका ध्यान यूरोप की ओर दिलाना चाहूंगा। हम ऊर्जा जरूरतों के लिए कुछ खरीद करते हैं जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन अगर तेल खरीद को देखें तो यूरोप रूस से जितना तेल एक दोपहर में खरीद लेता है उतना भारत पूरे एक महीने में खरीदता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान की भारत में विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी तारीफ की है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार के पंचायती राज मंत्री के ईश्वरप्पा विवाद में हैं। उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर और बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल का शव मंगलवार सुबह उडुपी की एक लॉज में मिला। शव के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में तैर रहा है और इस मैसेज में संतोष पाटिल ने अपनी मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। मैसेज में लिखा गया है कि पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं और मैं ये कदम अपनी सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद उठा रहा हूं। इससे पहले संतोष पाटिल ने एक खत प्रधानमंत्री और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को भी लिखा था जिसमें आरोप लगाए थे कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ईश्वरप्पा के कहने पर उन्होंने पूरा किया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तकाजा करने पर ईश्वरप्पा के नजदीकियों ने 40% रकम रिश्वत के तौर पर मांगी। इस घटना के बाद विपक्षी कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के इस्तीफे और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उधर ईश्वरप्पा का कहना है कि उन्होंने पहले ही संतोष पाटिल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है जो अदालत में है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। पंजाब के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पंजाब की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका तब मिला जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब राज्य ऊर्जा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव और ऊर्जा सचिव भी मौजूद थे लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुलाकात में नहीं थे। इस पर तंज कसते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कहा कि भगवंत मान की गैर हाजिरी में अरविंद केजरीवाल ने IAS अफसरों को तलब किया, इससे डीफैक्टो CM और दिल्ली के रिमोट कंट्रोल की पोल खुल गई है। ये संघवाद का उल्लंघन है, पंजाब की अस्मिता पर चोट है। मान और केजरीवाल को इस पर सफाई देनी चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि सबसे खराब की उम्मीद थी, सबसे खराब ही हुआ। उम्मीद से काफी पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को अपने हाथों में ले लिया। भगवंत मान एक रबर स्टैंप है, ये सबको पहले से पता था लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर इसे साबित भी कर दिया। इस पर आपके वरिष्ठ नेताओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन पंजाब में आपके प्रवक्ता मलविंदर सिंह ने सफाई दी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, हम हमेशा उनकी सलाह लेते हैं, अगर किसी सकारात्मक कदम और पंजाब की बेहतरी के लिए कोई अनौपचारिक बैठक होती है तो विपक्ष को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए बल्कि इसका समर्थन करना चाहिए। इस बीच भगवंत मान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत जल्द पंजाब के लोगों को एक अच्छी खबर दूंगा। आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ने की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हो गई है जबकि फरवरी में ये 6.07% थी। ये तब है जब मार्च की इस खुदरा महंगाई दर में पेट्रोल डीजल और CNG की महंगाई पूरी तरह शामिल नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बाद पिछले 21 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 14 बार बढ़े हैं और इनमें 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई है। ईंधन के दामों में इस तेजी का असर बाकी महंगाई पर भी पड़ता है और वो भी मार्च के आंकड़ों में पूरी तरह नहीं दिखी है। महंगाई दर बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक पर भी अब ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। झारखंड के देवघर में केबल कार हादसे की झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को एक पखवाड़े के अंदर ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपनी है। इस केबल कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 45 घंटे तक चले बचाव अभियान में 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। ये बचाव अभियान काफी मुश्किल और खतरनाक हालात में अंजाम दिया गया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने निभाई। जमीन पर सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया। बचाव अभियान के दौरान 2 लोगों की मौत नीचे गिरने से हुई। अब इस हादसे की वजहों की जांच चल रही है। शुरुआती जांच से पता लग रहा है कि रोपवे चलाने वाली कंपनी केबल कारों की ठीक से देखरेख नहीं कर रही थी। हादसे के दिन रविवार को केबल कारें सुरक्षा नियमों को ताक पर रखते हुए ज्यादा लोगों को भरकर चलाई जा रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो इस हादसे की गहन जांच कराएंगे। कोरोना लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन कर पार्टी करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनाक पर जुर्माना लग सकता है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दोनों को इस मामले में पेनल्टी का नोटिस जारी कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल में ब्रिटिश सरकार के दफ्तरों में पार्टी करने के मामले में 50 से ज्यादा लोगों को पेनल्टी के नोटिस जारी किए गए हैं। कोरोना दिशा निर्देशों को तोड़ते हुए आयोजित इन पार्टियों का विवाद पार्टीगेट नाम से काफी चर्चित हुआ था। ऑपरेशन हिलमैन के तहत मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक जांच के बाद इस मामले में नोटिस जारी किए हैं।
और आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।